राघवेंद्र वैदेही के पास बात करने के लिए उसके घर पर आया था। पहले दोनों में थोड़ी गहमागहमी हुई, लेकिन बाद में वैदेही राघवेंद्र की बात सुनने के लिए तैयार हो गई थी। तुम इस तरह हंसना बंद करोगे? राघवेंद्र के जोर जोर से हंसने पर वैदेही झुंझला उठी और चिल्लाकर बोली, बिना सबूतों के मैं तुम्हारी इन मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करने वाली। यश तुमसे 100 गुना बेहतर है, उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने बंद करो।
क्या बात है, यशवर्धन जी से सीधा यश? लगता है यश ने सच में तरक्की कर ली है। किसी ज़माने में मैं भी उसे इसी नाम से बुलाया करता था।
हाँ, और अब तुमने वो हक खो दिया है।
अच्छा हुआ हमने वो हक खो दिया। वो आदमी किसी के भी भरोसे के लायक नहीं है।
और क्या कहा था आपने? भले ही त्यागी जी ने हमारा नाम मुख्यमंत्री पद के लिए अनाउंस कर दिया हो, लेकिन हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लगता है न्यूज़ रिपोर्टर होने के बावजूद आपको न्यूज़ देखने का टाइम नहीं मिलता।
क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? वैदेही ने हैरानी से पूछा।
एक बार न्यूज़ चैनल पर आ रही ब्रेकिंग न्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राघवेंद्र के कहने पर वैदेही ने टीवी ऑन किया। उसने न्यूज़ चैनल लगाया तो सब में एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, जिसमें यशवर्धन के निर्विरोध मुख्यमंत्री चुने जाने की खबर थी। 2 ही दिन बाद यशवर्धन मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने वाला था। ये कब हुआ और यशवर्धन ने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? न्यूज़ देखने के बाद वैदेही हैरान थी।
आपको बताकर भी क्या बताएगा, यही कि आपकी मेहनत से इकट्ठे किए हुए सबूतों का उसने मुख्यमंत्री पद से सौदा कर लिया है।
राघवेंद्र की बात सुनकर वैदेही और भी हैरान हो गई। वो एकटक उसकी तरफ देख रही थी।
तुम झूठ बोल रहे हो।
और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? चलिए मान लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके ये न्यूज़ चैनल्स झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? राघवेंद्र ने जवाब दिया।
यश ऐसा कर ही नहीं सकता, ज़रूर उसने तुम्हें इस बारे में बताया होगा और तुमने बेइज्जती के डर से अपना नाम खुद से पीछे ले लिया। अब यहाँ आकर झूठ बोल रहे हो ताकि हम दोनों के रिश्ते के बीच दरार डाल सको।
वैदेही अभी भी राघवेंद्र की बातों को झुठलाने की कोशिश कर रही थी।
क्या सच में तुम्हें ये लगता है?
भले ही तुम बहादुर हो, लेकिन साथ ही मासूम भी। यशवर्धन ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम चाहो तो देसाई जी से बात करके पूछ सकती हो। राघवेंद्र के कहने पर वैदेही ने उसी वक्त अनंत देसाई को कॉल मिलाया। राघवेंद्र ने उसे फ़ोन स्पीकर पर रखने को कहा ताकि वो भी उन दोनों की बातचीत सुन सके।
हाँ वैदेही जी, बोलिए, आपने न्यूज़ तो सुन ही ली होगी।
फ़ोन उठाते ही अनंत देसाई बोला, क्या मेरी एक बार यशवर्धन से बात हो सकती है प्लीज़? वैदेही ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, आप जानती हैं ना कि उन्हें निर्विरोध मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, उनकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। ऐसे में मैं आपकी उनसे बात नहीं करवा सकता, लेकिन मुझे कुछ पर्सनल बात करनी थी, बात बहुत ज़रूरी है।
वैदेही की बात सुनकर अनंत देसाई ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अभी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन शाम को देखता हूँ। वैसे बधाई हो वैदेही जी, आपकी और सर की मेहनत रंग लाई। सर ने सिर्फ सबूतों के बारे में राघवेंद्र से जिक्र ही किया था कि डर के मारे उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। अनंत देसाई की बात सुनकर राघवेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
जी, वो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि शाम के शो के लिए?
अभी के लिए शो को पोस्टपोन कर दीजिए वैदेही जी, अनंत देसाई ने वैदेही की बात को काटते हुए बीच में बोला। यशवर्धन बाबू मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, उसके बाद में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे भी आपके इकट्ठे किए हुए सबूत उन्हीं के पास हैं। हमने सोचा नहीं था कि राघवेंद्र इस तरह अपने कदम पीछे ले लेगा। सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सब कुछ अपने पास ही रखा था। अब आप तो जानती हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले किसी से मिल नहीं सकते। अपनी बात कहकर अनंत देसाई ने फ़ोन कट कर दिया था। वैदेही को इन सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो राघवेंद्र की तरफ देख रही थी, जिसकी बातें सच साबित होने की वजह से वो वहां पर बैठकर मुस्कुरा रहा था।
तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि तुम जीत गए और मेरी हार हो गई, वैदेही ने भारी आवाज में कहा। यशवर्धन की सच्चाई सामने आने की वजह से अंदर ही अंदर वो टूट गई थी।
सच कहूँ तो आज पहली बार अपनी जीत पर खुशी नहीं महसूस हो रही।
आपने बहुत अच्छा काम किया वैदेही जी, वरना आज तक किसी की औकात नहीं थी कि हमारे सामने खड़ा तक हो सके और आप हमारे खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कर ली, राघवेंद्र ने जवाब दिया।
वैदेही ने रिवॉल्वर नीचे रख दी थी। अब वो चुपचाप वहां पर खड़ी होकर सोच रही थी। काफी देर तक वहां पर बिल्कुल शांति छाई रही।
अभी सोचना बाकी रह गया क्या वैदेही जी? एक सौदा हम यशवर्धन के साथ करके आए थे, एक आज आपके साथ करते हैं। हमें मुख्यमंत्री पद मिले ना मिले, पर यशवर्धन भी इसके लायक नहीं है। हम यशवर्धन को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं, बशर्ते आपको हमारे खिलाफ सारे सबूत लौटाने होंगे। मैं तुम्हारी मदद के बिना ही बहुत कुछ कर सकती हूँ। यशवर्धन को भी अपने किए की सजा चुकानी होगी, वैदेही ने गुस्से में जवाब दिया।
एक बार फिर सोच लीजिए, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। जानता हूँ कि आपको ज्यादा पूछताछ के बिना अंदर जाने की परमिशन मिल जाती होगी, लेकिन इस बार मामला सरकार से जुड़ा हुआ है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप देख लूंगी। तुम्हारी बातें हो गई हैं तो तुम यहाँ से जा सकते हो, बोलते हुए वैदेही ने राघवेंद्र को दरवाजे की तरफ इशारा किया। राघवेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो एकटक वैदेही की तरफ देख रहा था। वैदेही की आवाज और चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो यशवर्धन से मिले धोखे से कितना दुखी थी। तुम सब लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक सुबह सभा आकर प्यार का दिखावा करके जाता है और दूसरा जबरदस्ती करने के बाद संभालने की बात करता है। किस गलत फहमी में हो तुम लोग और ये समाज जिन्हें ये लगता है कि एक लड़की को खुद को संभालने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है। धोखा मुझे मिला है राघवेंद्र, तुम्हें दुख मनाने की जरूरत नहीं है। दुखी होने के बावजूद वैदेही ने सख्त आवाज में जवाब दिया, हम आपकी बात समझते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हम भी आप। राघवेंद्र बोलते हुए रुक गया। वैदेही राघवेंद्र की तरफ देखकर हंसी और उसकी अधूरी बात को पूरा करते हुए कहा, ये कहना चाहते हो ना कि तुम भी मुझे पसंद करते हो? भले ही तुम मुझे पसंद कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले को मैं कभी पसंद नहीं कर सकती और ना ही मुझे धोखा देने वाले को। बोलते हुए वैदेही की आंखें नम हो गईं और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वैदेही को इस हाल में देखकर राघवेंद्र को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपना रुमाल निकालकर वैदेही की तरफ बढ़ाया। वैदेही ने उसकी तरफ ना में सिर हिलाया और उस रुमाल को लेने से मना कर दिया। मेरे लिए इतनी हमदर्दी मत दिखाओ राघवेंद्र, मेरी वजह से कल को तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला वैदेही जी, आप भी इसी खुली हवा में सांस लेंगी और मैं भी, और आपका प्यारा यश भी। मैंने अपने दिल की बात आपको बता दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे खिलाफ कुछ करेंगी और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। देखा जाए तो हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमसे प्यार करता है या नफरत, हम अपने काम पर भावहीन होकर लगे रहते हैं। चलिए अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। राघवेंद्र ने सलाम करने के लहजे से अपना हाथ ऊपर उठाया और वैदेही को बाय बोलकर वहां से जाने लगा। अचानक वो रुका और वैदेही की तरफ मुड़कर बोला, अगर आप ये सोच रही हैं कि यशवर्धन के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमें जेल हो जाएगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसके कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री का पद हमें ही मिलेगा।
अपनी बात पूरी करके राघवेंद्र मुस्कुराते हुए वहां से जा चुका था। वहीं वैदेही अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि यशवर्धन सच बोल रहा था या राघवेंद्र। उसे शाम होने का इंतजार था जब अनंत देसाई वैदेही की बात यशवर्धन से करवाने वाला था। दूसरी तरफ अनंत देसाई ने जैसे तैसे करके यशवर्धन से मिलने की जुगत लगा ली थी। वो सिक्योरिटी गार्ड बनकर यशवर्धन से मिलने आया था। यशवर्धन को अकेला देखकर उसने अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाल दी। उसे वहां देखकर यशवर्धन भी काफी खुश हो रहा था। हमें पूरा यकीन था देसाई जी, आप हमसे मिलने जरूर आएंगे, यशवर्धन खुश होकर उसके गले लगा। अनंत देसाई यशवर्धन से अलग हुआ और कहा, लेकिन बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके यकीन से परे है। क्या हुआ? कहीं उस राघवेंद्र ने तो कोई तमाशा नहीं खड़ा कर दिया या त्यागी जी ने अपना डिसीजन बदल दिया? इस बार त्यागी और राघवेंद्र ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है वैदेही को हम पर शक हो गया है और वो चुप बैठने वाली नहीं है। वो आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहती थी, ये तो मैंने उसे शाम तक रोक लिया। अनंत देसाई की बात सुनकर यशवर्धन सोच में पड़ गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हम वैदेही से बात करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं लगता कि ये सही वक्त होगा। यही सही वक्त है, आप नहीं जानते, सुबह हमने उन्हें अपने दिल की बात बताई थी और उन्होंने हाँ भी कह दी थी। हम उन्हें मना लेंगे, यशवर्धन ने जवाब दिया। उसकी जिद करने पर अनंत देसाई ने अपना मोबाइल निकालकर यशवर्धन को थमाया। उसने उसी वक्त वैदेही को कॉल किया। देसाई जी, आपकी बात हुई यश से? फोन उठाते ही वैदेही बोली, हम यश ही बोल रहे हैं और सच कहें तो आपके मुंह से यश सुनकर बहुत अच्छा लगता है। देसाई जी बता रहे थे कि आप हमें याद कर रही थीं, यशवर्धन ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बातें तो हमें भी बहुत से करनी हैं आपसे, लेकिन हमारी मजबूरी आप अच्छे से जानती हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले आपसे ही मिलेंगे। मुझे राघवेंद्र के बारे में बात करनी थी। देखो, ये मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करूंगी और ना ही मुझे ऐसा करने की आदत है। क्या तुमने राघवेंद्र के साथ कोई डील की है जिसके हिसाब से अगर वो मुख्यमंत्री पद से अपना नाम ले लेगा तो तुम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लोगे? यशवर्धन ने वैदेही की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वहां पर चुप्पी छाई रही। उसे चुप देखकर वैदेही की आंखों में आंसू थे। मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरी बात समझने की कोशिश करो वैदेही, ये सब मैंने हमारी भलाई के लिए किया है। राघवेंद्र जेल चला भी गया तो 2 दिन बाद वापस छूटकर आ जाएगा। तुम उसकी पहचान जानती नहीं हो। मैंने जो भी किया है हम दोनों के फ्यूचर के लिए किया है। सॉरी टू से, पर अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। भाभी मुख्यमंत्री जी, आपको आपकी 2 दिन की जेल मुबारक हो। आप अपनी सिक्योरिटी इंजॉय कीजिए, मुझे क्या करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। वैदेही, हमारी बात समझने की कोशिश करो। यशवर्धन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वैदेही ने कॉल कट कर दिया। वैदेही, वो गुस्से में जोर से चिल्लाया और त्यागी जी का फोन फेंक दिया। उसे गुस्से में देखकर अनंत त्यागी दौड़कर उसके पास आया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की जी का जंजाल बन सकती है। मुझे डर है कि वो आपको मुख्यमंत्री पद से, मैं अपने और मुख्यमंत्री पद के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, यशवर्धन ने उसकी बात काटकर बोला। आगे क्या करना है? अनंत त्यागी ने पूछा। खत्म कर दो उसे, वो लड़की कल का सूरज नहीं देखनी चाहिए और उसे मारने के लिए यहीं पर लेकर आना। हम अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं, यशवर्धन ने गुस्से में ऑर्डर दिए। अनंत त्यागी ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके बताए काम को पूरा करने के लिए निकल चुका था।